बस मैं यही सोच रहा था कि अगर ये लोग मेरे चर्च में से भी कुछ लोग एटीसी करने गए हैं और इन्हीं के बीच में थे, हमारे चर्च में ये लोग गन लेके आ जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बैंड बज जाएगा। लेकिन उनका नाटक बहुत अच्छा लगा, उसमें एक पति पत्नी झगड़ा कर रहे थे। एक बार एक बैंक में एक चोर घुसता है, कुछ डकैत लोग घुसते हैं और डकैत लोग अपना मुंह ढककर आए हुए थे। जैसे ही बैंक के अंदर घुसते हैं, एक जो डकैत था उसका जो ओढ़नी थी जो जिससे उसने मुंह ढका था वो नीचे गिर जाता है। जैसे वो नीचे गिर जाता है तो सामने एक आदमी बैठा था, उस आदमी को पूछता है, क्या तूने मेरा चेहरा देखा? तो आदमी बोलता हां। तुरंत उसने बंदूक निकाली और उसके सर पे गोली मारा, उसको मार डाला। एक औरत बाजू में बैठी थी, उसने उस औरत को पूछा, क्या तुमने मेरा चेहरा देखा? तो औरत बोलती, नहीं, लेकिन मेरा पति जो उधर बैठा ना उसने देखा है। लेकिन हमारी पत्नी ऐसी नहीं है, अच्छी बात है। एटीसी का जो समय था, जो एटीसी के विद्यार्थी यहां से अभी सर्टिफिकेट लेकर नीचे उतरे, वो यही कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है ना, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन मैं आज आपको जो वचन सुनाने जा रहा हूं वो ये कहता है कि अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी खत्म। वो सोचते हैं कि खत्म हो गया है, 9 महीने का समय उसी प्रकार होता है, बहुत मुश्किल समय से वो निकले, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है, तो परमेश्वर के राज्य में कभी भी कोई काम खत्म नहीं होता है, चाहे वो प्रसिशन हो, वो जिंदगी भर वो प्रसिशन हमारे साथ चलता है। एक वचन है जो मैं आपके स्क्रीन पर आएंगे, आपके नोट्स पर है, यिर्मयाह 18:6, ये कहता है, देख जैसा मिट्टी कुमार के हाथ में रहती है वैसा ही इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। बाइबल बताती है कि परमेश्वर वो कुमार है और उसके हाथ में ये मिट्टी है। बाइबल कभी ये नहीं बताती कि वो मिट्टी को नीचे रखता है, वो मिट्टी तब तक उसके हाथ में है जब तक उसका काम पूरा नहीं होता। चाहे 9 महीने हमने पूरे किए हो, चाहे एटीसी के विद्यार्थी हो, चाहे टीटीसी के विद्यार्थी हो, चाहे हम सब हो, जिंदगी हमने बहुत काटी हो परमेश्वर में, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ परमेश्वर में बाकी है। एक बार एक प्रचारक वचन सुना रहा था और अचानक एक आदमी बीच में उठा और उठकर बाहर चला गया। जब वचन खत्म हुआ तो उस आदमी की पत्नी प्रचारक के पास आई और उसको बोलने लगी, सॉरी, माफ करना, एक्चुअली मेरा पति बीच में उठकर चला गया। ऐसा नहीं है कि आपका वचन उन्हें पसंद नहीं आया, लेकिन उनको क्या है ना, नींद में चलने की आदत है। तो मैं नहीं चाहता कि यहां मैं नहीं सोचता कि यहां पर किसी को नींद में चलने की आदत हो। जो पहला पॉइंट है आज मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि हम उसके हाथ के काम हैं, हम उसके हाथ के काम हैं। यशाया 64:8 कहता है, तो भी हे यहोवा, तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुमार है, हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं, हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं। जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं, जो कुछ भी आप हैं, आप उसके काम हैं। बाइबल बताती है कि इससे पहले कि आप अपने मां के कोख में रचे जाते, आपके दिन उसके सामने गिने हुए थे। इससे पहले कि उसने संसार को रचा, आप उसके दिमाग में थे, आप गलती से नहीं आए। ये वचन आपके लिए कितना मायने रखता है, लेकिन मुझे, मेरे लिए ये वचन जिंदगी है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पिताजी फौज में थे और उनमें कई बुरी आदतें थी, और उनकी बुरी आदतों को सुधारने के लिए उनके माँ बाप ने उनकी शादी करवा दी। मेरी मां से उनकी शादी हुई, शादी के बाद वो 2 दिन मेरी मां के साथ रहे और फिर वो जहां उनकी पोस्टिंग थी लद्दाख में, वो लद्दाख चले गए। इन 2 दिनों में मेरी मां गर्भवती हो गई और मैं उनके कोख में था, लेकिन उसके बाद मेरे पिताजी कभी वापस नहीं आए। मेरी मां ने 9 महीने मुझे पेट में रखा और उसके बाद उन्होंने मुझे जन्म दिया। मेरे पिताजी मेरे जन्म पर भी नहीं आए, 2 साल के बाद मेरे पिताजी आए, तब मैं 2 साल का था, ऐसा मेरी मां मुझे बताती है। जब वो आए और उन्होंने मुझे देखा तो सबसे पहला वाक्य जो उन्होंने मेरी मां को ये कहा कि ये लड़का मेरा नहीं है, ये लड़का मेरा नहीं है। ये वाक्य इतना दर्दनाक था मेरी मां के लिए। मेरी मां बहुत रोई, मेरी मां मुझे गले लगा के रोई। मुझे ये तो मालूम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मैं उम्र में बढ़ता गया, मुझे वो मेरे बाप के स्वभाव में दिखने लगा। वो मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, आज बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये बात मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि उन्होंने मुझे कभी भी, मुझे याद नहीं है कि मुझे कभी गोद में लिया हो। आज तक उन्होंने कभी मुझे गोद में लिया नहीं। लिया मेरे भाई हैं, मेरी छोटी बहन है, उनको वो गोद में लेते थे, उनको वो मार्केट लेके जाते थे, उनके साथ वो खेलते थे। 18 साल मैंने अपने बाप के साथ उनके घर में बिताया, लेकिन मुझे एक भी वाक्य याद नहीं कि उन्होंने मुझसे प्यार दिखाया। हर वक्त कई बार उन्होंने मेरे मुंह पर बोला कि तू मेरा बेटा नहीं है। वो वाक्य मेरे लिए बहुत दर्दनाक था। मैं तिरस्कार में पला बड़ा। जब भी उन्होंने ये वाक्य मुझे कहा, मैं अपने घर के बाहर जाकर रोता था। कई बार मैंने सोचा कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूं, क्योंकि मुझे कौन प्यार करता है, कौन मुझे चाहता है। ये वचन जब मैं अपने 19वें साल में मुंबई आया, मैं इस चर्च में पहुंचा, बीबीसी में, ये वचन जब पहली बार मैंने सुना, ये वचन मेरे लिए जिंदगी था, क्योंकि मैं ये सुनना चाहता था कि मैं गलती से यहां नहीं आया, लेकिन परमेश्वर मेरा पिता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लोग आपके बारे में बात करेंगे, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, लोग आपका तिरस्कार करेंगे, चाहे कोई आपके मुंह पर बोले, चाहे कोई आपके पीठ पीछे बोले, लेकिन आप गलती से यहां पर नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से आपको बनाया। आप जो भी है, आप महत्वपूर्ण है, आप अनमोल है, और आपके जैसा कोई इस संसार में नहीं है। क्यों ना हम एक दूसरे को कहें कि तुम परमेश्वर का चमत्कार हो। एक दूसरे को कहें। लेकिन तकलीफ यह है, समस्या यह है कि हम अपने आप से खुश नहीं है, हम अपने आप से खुश नहीं है। हम अक्सर अपने नाक को लेकर शिकायत करते हैं कि मेरी नाक जो है पकोड़े जैसी है, मेरे कान जो है हाथी जैसे हैं, मेरा सर बड़ा है, मेरा कद छोटा है, मेरा कद बड़ा है, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं। हम कभी खुशी नहीं है। हम जब आईने के सामने खड़े होते हैं तो हम किसी और की तरह बनना चाहते हैं। कोई और है जिसको देखकर हम सोचते हैं, ओ तुम्हारे बाल कितने अच्छे हैं, मेरे बाल देखो कैसे रूखे सूखे हैं, तुम्हारा कलर कितना अच्छा है, तुम्हारा रंग कितना अच्छा है, मेरा रंग देखो। जब तक हम अपने आप से खुश नहीं होंगे, परमेश्वर में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम हमारी इस ना खुशी की वजह से कई लोग दुनिया में बहुत पैसा कमा रहे हैं। कैसे मालूम है? ब्यूटी सलून खोलकर, ब्यूटी पार्लर खोलकर, हर कॉर्नर पे एक स्पा है, प्लास्टिक सर्जरी करते हैं लोग, डॉक्टर, और कमा रहे हैं, क्योंकि हम अपनी नाक से खुश नहीं है। हम अपनी नाक को सीधा करने में लगे, हमारे बाल हमारे काले रंग में पसंद नहीं है, हम अपने बालों को रंग कर रहे हैं, हम भूरे नीले बना के घूम रहे हैं। आपको लगता है कि इस तरह हम अपना बाहरी जो रूप ढंग है इसको बदल के हम अंदर से खुश हो जाएंगे? नहीं होंगे, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि हम अपने आप से खुश नहीं है तो हम परमेश्वर पर दोष लगा रहे हैं कि प्रभु तूने जो बनाया है वो गलत बनाया है, तूने मेरे बाल बनाए तूने गलत बनाया और मैं उसको बदलने के चक्कर में हूं। परमेश्वर बहुत अच्छा है, वो ये कहता है कि वो आपके बाहरी रूप रंग में इंटरेस्ट नहीं रखता, वो आपके बाहरी बनावट पे इंटरेस्ट नहीं रखता, लेकिन वो आपके हृदय में इंटरेस्ट रखता है। क्यों कहता है वो मालूम है आपको? क्योंकि आपका जो बाहरी रूप ढंग है वो उसने बनाया, उसको आप बदलने के बाद भी आप खुश नहीं रह सकते, लेकिन वो हमारे हृदय को जांचता है, क्योंकि ये एक ही चीज है हमारा हृदय जो हम बदल सकते हैं, और उसमें वो रुचि रखता है, वो उस हृदय के पीछे है, वो उस हृदय को देखना चाहता है। हमें चाहिए कि हम अपने आप से खुश हो जाएं। एक व्यक्ति है बाइबल में दाऊद, जिसका नाम दाऊद है, वो कहता है भजन संहिता 139 में, 139 में 14 वचन, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं, तेरा काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। कितने सुंदर वचन है ये, कौन कह रहा है आपको मालूम है? वो कह रहा है कि परमेश्वर तूने मुझे भयानक और अद्भुत रीति से बनाया, तेरे काम कितने ही मनोहर हैं और मैं उनको भली भांति जानता हूं। आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने आपको बहुत अच्छे ढंग से बनाया है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आपको मालूम है दूसरे दिन उन्हें छुट्टी लेनी पड़ी? जानते हैं आप बाइबल में, आदम को बनाने के बाद अगले दिन ऑफ लेना पड़ा परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत मेहनत किया था उसे। परमेश्वर को पसंद नहीं कि कोई उसकी रचना के बारे में कुछ भी बुरा बोले। कभी कभी कोई और नहीं बोल रहा है, हम खुद अपने बारे में बोल रहे हैं, हम खुद बोल रहे हैं कि हम कैसे दिखते हैं, हम अजीब दिखते हैं, हम खराब हैं। आप खराब नहीं है। दाऊद, उसके घर में उसके भाई उसको नहीं मानते थे, उसके पिताजी उसे नहीं मानते थे, उसके पिताजी तो उसे बेटा जैसा भी नहीं मानते थे, क्योंकि एक बार नबी समुएल जब घर में आया और उसने कहा कि अपने सारे बेटों को मेरे सामने लाओ, उसने दाऊद को बुलाया भी नहीं। उसके उसके भाई उसे कुछ नहीं मानते थे। अगर हम ऐसे घर में पले हैं तो हम हमेशा रोते घूमेंगे, बोले हमारे भाई नहीं मानते, हमारे घर में कोई इज्जत नहीं है, पिताजी प्यार नहीं करते। लेकिन ये लड़का ये जानता था कि परमेश्वर ने उसे बनाया है और उसके जैसा कोई नहीं है। जब वो एक दिन जंग के मैदान में जाता है और वहां पर एक बड़ा सा राक्षस दानव खड़ा है और इस इजरायली सेना को ललकार रहा है और ये इजरायली सेना छुप रही है, डर रही है, तब ये लड़का वहां पर जाता है और क्या कहता है, वो पहली बात वो ये कहता है कि कौन है ये फिलिस्ती, ये कत्ता है फिलिस्ती कि वो परमेश्वर की सेना को ललकारे, क्योंकि वो जानता था कि वो किसका बंदा है। क्या आप जानते हो आप किसके बंदे हो? जब आप ये जान जाओगे तब कई दानव जो आपके जीवन में है वो आपको छोटे नजर आने लगेंगे, कई समस्याएं जो आपके जीवन में जिसको लेकर आप रोते हैं आप उसके लड़ने के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको विजेता बनाया है, परमेश्वर ने आपको जीतने के लिए बनाया है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि परमेश्वर कार्य कर रहा है, परमेश्वर कार्य कर रहा है, वो आराम नहीं करता, वो छुट्टी नहीं बना रहा है, वो एक दिन भी आपके ऊपर से छुट्टी नहीं बनाता। बाइबल बताती है कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा। इस वक्त भी परमेश्वर आपको बना रहा है, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है, भले आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, भले आपकी तकलीफें कितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर उन सब के बीच में भी वो काम कर रहा है और एक दिन उन जगहों पर जहां पर आपको रास्ता नजर आता वहां पर भी वो रास्ता निकालेगा। आमीन। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है। हम सोचते हैं कि हमने सब कुछ देख लिया, जिंदगी देख ली, 10 साल हो गए परमेश्वर में, 100 लोगों की कलीसियां हैं, अरे सब कुछ मालूम है। मैं कहता हूं आपको कुछ भी नहीं मालूम है अभी, क्योंकि आपने उसे जाना नहीं, जिंदगी अभी शुरू हुई है। जो अच्छी बातें हैं हमारे जीवन में, द बेस्ट इज येट टू कम, मतलब जो उत्तम है वो अभी भी आना बाकी है। हमने परमेश्वर को नहीं जाना, परमेश्वर ये कहता है कि वो हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। आपको मालूम है जब परमेश्वर ने इसराइलियों को वहां से निकाला, गुलामी में से निकाला, तो परमेश्वर ने अपनी योजनाएं उनको नहीं बताई, मूसा को नहीं बताई, और जब वो गुलामी में से निकले वो भाग रहे थे और सामने क्या आ जाता है, लाल समुंदर। जब वो लाल समुंदर आ जाता है तो वो कुड़कुड़ाने लगते हैं, क्योंकि वो सोच रहे थे परमेश्वर कहाँ है, अगर परमेश्वर ने हमें छुड़ाया तो यहां आकर क्यों फंसाया। कभी कभी हम भी ऐसे सोचते हैं जीवन में, एक तकलीफ के बाद दूसरी तकलीफ, हम सोचते हैं उससे छुड़ाया तो यहां क्यों लाके लटकाया। लेकिन वो हमारे संग संग है, वो हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। उसने उस लाल समुद्र को सुखाया और उसमें से उनके लिए मार्ग बनाया, जो मनुष्य के लिए संभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। यिर्मयाह 18:6, देख जैसा मिट्टी कुमार के हाथ में रहती है वैसा ही इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। फिलिप्पियों 1:6, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुमने अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। काम अभी पूरा नहीं हुआ है, काम पूरा होएगा। कब तक पूरा होएगा? यहां पे लिखा है कब तक पूरा होगा बताइए, जब तक हम यीशु मसीह को मुख से मुख ना देख लें, जब तक यीशु मसीह ना आए तब तक ये काम चलता रहेगा। आपका प्रशिक्षण, आपका ट्रेनिंग अभी खत्म नहीं हुआ, आपकी जिंदगी भी खत्म नहीं हुई, परमेश्वर तब तक आपके जीवन में कार्य करता रहेगा जब तक हम उसके सम्मुख ना खड़े हो जाएं। इसका कोई डेडलाइन नहीं, इसका कोई ऐसा एंड नहीं है, लेकिन ये चलता रहेगा। एक राजा था और उसका एक दोस्त था, ये दोनों हमेशा जंगल में शिकार करने जाते थे। ये जो दोस्त था उसका, वो परमेश्वर का भक्त था, हर बात में कहता था परमेश्वर कार्य कर रहा है, परमेश्वर कार्य कर रहा है। एक दिन दोनों जंगल में जाते हैं, दोनों अच्छे दोस्त थे, राजा के बंदूक में कोई प्रॉब्लम थी, राजा गोली मारता है लेकिन गोली गलती से उसके अंगूठे में पैर पे आके लगती है और उसका अंगूठा उड़ जाता है। वो दर्द में रो रहा है, वो अपने दोस्त को बोलता है ये क्या हो रहा है यार मेरे साथ। उसका दोस्त बोलता है परमेश्वर कार्य कर रहा है। राजा भड़क गया, बोलता मेरा अंगूठा उड़ गया, तू बोलता परमेश्वर कार्य कर रहा है, और उसको उसने कैद खाने में डाल दिया, जेल में डाल दिया, उसको ऐसे दोस्त ही नहीं थी। कुछ दिनों के बाद राजा को शिकार का शौक था तो फिर वो शिकार करने गया। जब वो शिकार करने गया कुछ आदिवासी लोग आ गए वहां पर और उसको पकड़ लिए और उसको उठाकर वो अपना खाना खाने के लिए, वो उनका खाना था, उसको उठाकर वो ले गए जंगल अपने अड्डे में वहां पर पकाने के लिए। एक बड़ा सा बर्तन था उसमें पानी उबल रहा था और उसमें डाल के वो पकाने वाले थे, पका के खाने वाले थे। राजा वहां डर के मारे खड़ा है, लेकिन उनकी एक उनका एक अंधविश्वास था कि वो कोई भी चीज को नहीं खाते जिसके शरीर में कोई अंग ना हो या कोई अंग मिसिंग हो, तो ऐसे कोई जानवर या किसी इंसान को नहीं खाते। तो उन्होंने उस राजा को चेक किया, जब राजा को चेक किया तो देखा था उसका अंगूठा ही नहीं है। तो उन्होंने ये कोई काम का नहीं, इसको बाद में इसको छोड़ दो, जंगल में छोड़ दो। राजा वहां से बच के अपने अपने राजमहल वापस आया, बड़ा खुश। हाँ अच्छा हुआ मेरा दोस्त सच बोलता था यार, परमेश्वर कार्य कर रहा है, अच्छा हुआ अंगूठा उड़ गया, नहीं तो आज वो लोग पका के खा जाते मुझे। उसने अपने दोस्त को छुड़ाया, उसको बुलाया, उसको बोला सॉरी यार, माफ करना, मैं तो गलत सोच रहा, तू सच कहता है यार, परमेश्वर सचमुच कार्य कर रहा है, मुझे माफ करना, मैंने तेरी बात को गलत समझा और तुझे कैद खाने में डाल दिया। उसने बोला नहीं दोस्त, राजा सही किया तूने, परमेश्वर कार्य कर रहा है, अगर मैं तेरे साथ होता तो आज वो खाने में मुझे खा गए होते। परमेश्वर कार्य कर रहा है, आपको नहीं लगता होगा लेकिन वो कार्य कर रहा है। तीसरी बात, सही प्रकार की मिट्टी बनो। परमेश्वर के हाथ में अगर आपको होना है तो जरूरी है कि आप अच्छी मिट्टी हो। मिट्टी का एक गुण होता है कि मिट्टी बहुत कोमल होनी चाहिए। एक बार एक मालिक अपने कमरे में घुसता है, उस कमरे में बहुत सारे बर्तन थे, सोने के बर्तन थे। जैसे मालिक अंदर घुसता, सारे बर्तन चाह रहे थे कि मालिक हमें अपने हाथ में ले ले और मालिक हमें इस्तेमाल करे। तो वहां पर सोने का बर्तन रखा हुआ था, सोने का बर्तन अपने मालिक को पुकारता है, मालिक मालिक।